चुभन के सभी श्रोताओं को शबिस्ता ब्रजेश की ओर से कोटि कोटि नमन। आप सोच रहे होंगे कि एक लंबे अंतराल के बाद आज हम आपसे मिलने आए हैं। आप में से कुछ लोगों को विदित है और शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम कि ये पल चुभन की संयोजिका भावना घई के लिए कितने अवसाद ग्रस्त थे, क्योंकि जीवन में अगर किसी से पूछा जाए कि उसकी सबसे बहुमूल्य चीज कौन सी है तो वो अपनी माँ का नाम लेगा। और ये इसी अंतराल में भावना घई जी की माँ सुशीला घई जी इस दुनियाए फानी से, इस भवसागर से, इस संसार को अलविदा कहकर अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी के अस्तित्व में विलीन हो गई। सबसे पहले उनको शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। मैं जानती हूँ कि भावना इस समय किस मानसिक यंत्रणा के दौर से गुजर रही है, और जब मित्र संकट में हो, जब मित्र कठिनाई में हो, जब मित्र पीड़ा में हो, जब मित्र दर्द में हो, तो एक सच्चे मित्र का कर्तव्य होता है कि वो उस समय अपने मित्र के लिए एक संबल बने, एक साहस का पर्याय बने, और शायद यही एक मित्र का धर्म होता है। तो मैंने सोचा कि चुभन की ये यात्रा निर्विवाद रूप से चलती रहे, इसमें कहीं रुकावट ना आए, इसलिए जब तक भावना जी अपने आप को संयमित करने का प्रयास कर रही हैं, इस दुख से उबरने का प्रयास कर रही हैं, क्यों ना मैं चुभन के श्रोताओं से कुछ देर के लिए अपना वार्तालाप करूं। आज सिर्फ भावना जी की माँ दुनिया से नहीं गई, बल्कि कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि वो सिर्फ भावना की नहीं, हम सब लोगों की माँ थी। क्योंकि माँ की ममता का कोई बंटवारा नहीं होता, माँ के घर कभी बच्चों का बंटवारा नहीं होता, माँ के ममत्व का कोई बंटवारा नहीं होता, माँ की सीखों का कोई बंटवारा नहीं होता। जब मैं पहली बार माँ से मिली, उस समय मैं BA पार्ट 1 की छात्रा थी, और उस पहली मुलाकात में मैंने देखा कि उनके चेहरे पर एक प्रकाश पुंज सा अलौकिक था, जिसको एक बच्चे की आत्मा ही समझ सकती है। उनके हृदय में, उनकी आंखों में उमड़ता हुआ, हिलोरे मारता हुआ मैंने ममता का सागर देखा। और जब मुझे ये पता चला कि संगीत की उच्च शिक्षा भी माँ जी ने प्राप्त कर रखी है, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि माँ आप एक भजन सुनाओ। तो उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी का भजन सुनाया, और फिर कुछ समय ऐसा आया कि बहुत दिनों तक माँ जी से मुलाकात नहीं हो सकी। और फिर एक बार मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहा माँ से कि माँ एक बार फिर आपके भजन सुनना चाहती हूँ, और शायद ये नहीं जानती थी कि वो आवाज़ जो हमारे कानों में सतत मिश्री घोला करती थी अब वो दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। माँ जी ने अपना भजन भेजा, भजन सुना, तो मैंने महसूस किया कि BA पार्ट 1 में और आज उम्र के इस पड़ाव पर जो मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी, कहीं से भी बुढ़ापे ने उनकी आवाज़ के यौवन को नहीं हरा था, बल्कि उनकी उनके स्वरों पर, उनकी सरगम पर वैसी ही तरुणाई थी जो मैंने BA पार्ट 1 में सुनी थी। और शायद अगर माँ को उस समय मौका मिलता, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि पापा जी हर तरह से उनका ध्यान रखते थे, और उन अगर वो कहती कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो पापा उनका पूरा सहयोग करते। लेकिन वो एक नारी थी, एक माँ थी। माँ और नारी दोनों का कर्तव्य होता है कि जब बात घर गृहस्थी की हो, जब बात परिवार की हो, जब परिवार बच्चों की हो, तो अपने अपना शौक, अपनी ख्वाहिशें कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने उस शौक को कभी अपने अधरों तक नहीं लाई, और उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ अपने बच्चों की परवरिश की। चुभन की संयोजिका भावना जी से आप परिचित हैं, और जब मैं उसको देखती हूँ तो यकीनन माँ की हूबहू परछाई कहीं उसमें नजर आती है। और उसको देखकर एक बात जरूर कहूंगी कि श्रवण कुमार, हमारे यहाँ कहते हैं कि जितना पुराना इतिहास है, कुछ लोग कहते हैं कि वो कपोल कल्पित है, मिथक है, लेकिन जब भावना का सेवा भाव मैंने देखा अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, तो मैं दावे से कहती हूँ कि इस देश में श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, और शायद ऐसे ही लोगों पर ये दुनिया टिकी हुई है। वरना आज इस कलयुग में स्वार्थ, अमानवीयता अपने चरम पर है। वो प्रेम जो कभी एक दूसरे को बांधता था, आज वो प्रेम कहीं लुप्त तो हो गया है, लेकिन भावना जैसे लोग आज भी उसको जी रहे हैं। और शायद आने वाली पीढ़ी में ये गुण एक दुर्लभ प्रजाति बन चुके हैं। माँ जो इस दुनिया से गई, ये वो पीढ़ी थी जिसने पुरातन और नवीन दोनों संस्कृतियों में सामंजस्य बिठाकर अपना जीवन यापन किया, जो अपने बुजुर्गों के आगे शीश पर पल्लू भी डालती थी, और जब अन्याय की बात आए तो वो उस अन्याय का मुखर विरोध भी करती थी। माँ जो अपने बच्चों को मोबाइल के जरिए नहीं बल्कि अपनी लोरियों के जरिए संस्कार भरती थी, वो माँ थी सुशीला घई। मैं आपसे बताऊं कि मैं बहुत दिनों से माँ जी से नहीं मिली थी। इसको मैं अपना दुर्भाग्य कहूँ, अपना निकम्मापन कहूँ, अपने कार्य की व्यस्तता कहूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं उनको कभी भूल गई हूँ, बल्कि मैं तो अपनी पीड़ा इसी तरह से व्यक्त करूँगी माँ के लिए कि वो दिन जिस दिन तुम्हें देखा नहीं है, मेरे जीवन का वो हिस्सा नहीं है, और तुम्हें मैं किन हदों तक चाहती थी मुझे खुद इसका अंदाज़ा नहीं है, और तुम्हारी याद आए या ना आए, तुम्हारी याद आए या ना आए, तुम्हें भूली हूँ मैं, ऐसा नहीं है। तो व्यस्तताओं के कारण मैं माँ जी से नहीं मिल सकी, लेकिन बराबर फोन से संपर्क रहा। मैं हमेशा कहती माँ जी आज आ जाऊँगी, कल आ जाऊँगी, एक तड़प थी। और जब ये पता चला कि माँ जी इस दुनिया में नहीं है, तो भी हमारा दुर्भाग्य था कि मैं माँ जी के अंतिम दर्शन नहीं कर सकी। चौथे में मैं भावना के आवास पर पहुंची। मैं उस समय की अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को शब्द नहीं दे सकती। सामने माँ जी का चित्र था, गद्दे पर बैठी थी। बार बार मन कर रहा था कि आज माँ होती तो शायद उनकी आगोश में कुछ पल सिर रख कर अपने वो सारे संघर्ष बताती, अपनी व्यस्तताओं का हाल बताती। फिर मन ने कहा कि माँ हम तुमसे मिलने नहीं आ सके। मैं अपने घर लौट आई। उसके बाद भावना ने फोन करके मुझे कहा कि शबिस्ता माँ के फूल को लेकर इलाहाबाद जाना है, संगम में विसर्जित करना है, तो मेरे मन में कहीं ये था कि भावना रायबरेली की तरफ से चली जाए और मैं एक बार फिर माँ जी से मिल सकूं। तो लेकिन भावना ने बताया कि वो सुल्तानपुर रोड से जा रही है। मैंने अपनी उस मांग को कहीं अपने हृदय में दफन कर लिया और एक बार मन में आया कि एक बार फिर कहूं भावना से कि रायबरेली की तरफ से चली जाए, लेकिन मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा किसी को भी जो है डिस्टर्ब नहीं करती, भले ही वो मेरा कितना प्यारा दोस्त क्यों ना हो। मुझको हमेशा ये लगता है कि नहीं, मेरी वजह से सामने वाले को कभी कोई कष्ट ना हो। तो मैं खामोश रह गई। दूसरे दिन भावना ने मुझे सुबह फ़ोन किया कि शबिस्ता, ऐसा है, ड्राइवर मान नहीं रहा और मैं रायबरेली की तरफ से आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भावना, जब लौटना तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं सड़क पर ही आकर मिल लूँगी। तो भावना ने कहा नहीं, मैं अब घर आऊँगी और तुमसे मिल कर जाऊँगी, और वो भी सुबह। उसके बाद जब भावना पहुँची चुनमुन मंदिर के सामने, पापा जी के हाथों में माँ का कलश था, श्वेत चादर से ढका हुआ, और जब मेरी नजर उस पर गई तो मुझे ऐसा लगा कि माँ कह रही है कि देखो, मरने के बाद भी माँ अपने बच्चों से मिलने उसके घर आ जाती है। मैंने उस समय भावना के दुख को बढ़ाना उचित नहीं समझा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बस मुझे ये लगा कि माँ सुहागिन गई है, तो मैं चुनरी लाई, माता रानी थी, क्योंकि वो तो जगत जननी है, आदि शक्ति है। मैंने माँ के अस्थि कलश पर डाला, उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और फिर उनके जाने के बाद मैंने अपने पति से कहा कि ब्रजेश जी, देखो माँ मुझसे मिलने आई थी, मरने के बाद भी उसने सिद्ध कर दिया कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। और वास्तव में माँ है भी ऐसी चीज कि माँ तेरी उपमा अनुपम है, अनुपमेय गरिमा है, तू है यशस्वी शाश्वत, तेरी अकथनीय महिमा है। मेरे सभासद काल में एक सभासद बिल्कुल काला था, उसका रंग बिल्कुल काला था, इतना कि शायद अगर किसी बच्चे को दिखा दिया जाए तो वो डर जाए। और जब मैंने उस बच्चे का नाम पूछा तो उसने कहा कि उस सभासद का नाम मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम हसीन है। तो मैं बार बार उसके रंग को देखूं, उसके रूप को देखूं और फिर उसके नाम को देखूं। मैं सोच रही थी कि माँ ने क्या सोचकर इसका नाम हसीन रख दिया। तो फिर मुझे किसी कवि की एक कविता याद आई कि उसने कहा था कि दुनिया मुझे बसूरत कहती है लेकिन मुझे दर्द नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए हसीन हूं। आप मोटे हो जाइए, सैकड़ों लोग आपको टोकने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब आप कुछ समय परदेश में बिताकर वापस आएंगे और अपनी माँ के पास जाएंगे तो हमेशा माँ कहेगी, बेटा खाना अच्छा नहीं मिला था क्या, कमजोर से लग रहे हो। शायद इसीलिए रामबाबू रस्तोगी जी को कहना पड़ा कि न जाने कौन सा चश्मा मेरी अम्मा लगाती है, न जाने कौन सा चश्मा मेरी अम्मा लगाती है, सफर से जब भी लौटूं मैं उन्हें कमजोर लगता है, सफर से जब भी लौटूं मैं उन्हें कमजोर लगता हूं। और यकीनन कि माँ के चश्मे का नंबर ना आप जान सकते हो, ना हम जान सकते हैं, ना ये कुदरत जान सकती है। माँ की रहमतों पर तो ये सारा जहान निसार है, या ये कहा जाए कि माँ अपने छोटे से घराने की परवरदिगार है, अपने छोटे घर से घराने की खुदा है, अपने छोटे से घराने की भगवान है, और अगर चारों धाम देखने हैं, अगर हज देखना है, अगर काबा देखना है, अगर किबला देखना है, अगर जन्नत देखना है, अगर स्वर्ग देखना है, तो सिर्फ माँ को देख लो, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आज दुनिया कंप्यूटर पर नाश करती है, माँ से बड़ा कंप्यूटर इस संसार में कोई नहीं है। माँ से बड़ा कंप्यूटर हमने कोई देखा ही नहीं, क्योंकि उसके उस छोटे से शरीर में उसे याद रहता है कि उसके पति को सुबह कौन सा कपड़ा पहनना है, उस कपड़े से मैच करती हुई कौन सी टाई उसे लगानी है, ऑफिस जाते समय उसका पर्स भी उसको देना है। उस माँ को ये पता रहता है कि आज उसके बच्चे को नाश्ते में क्या चाहिए, आज उसके पति को लंच में क्या देना है। उस माँ को ये पता रहता है कि किस रिश्ते नातेदार के यहाँ शादी है, किसके यहाँ बेटी की शादी में क्या न्योता देना है, क्या निमंत्रण देना है, किसके यहाँ साड़ी भिजवानी है। उस माँ को ये भी याद रहता है कि उसके सास ससुर की दवाई भी उसको लानी है। तो एक माँ कंप्यूटर से भी बढ़कर है, उसकी मेमोरी की तुलना किससे की जाए जिसकी मेमोरी में पूरा एक घर समाया रहता है, उस माँ की मेमोरी में। नमन करती हूँ उस माँ के चरणों में। ये एपिसोड एक माँ को समर्पित है। इस कार्यक्रम की संयोजिका की माँ को नहीं, हम सबकी माँ को समर्पित है, क्योंकि जो भी उनसे मिला होगा उसको कहीं ये नहीं लगा होगा कि वो उनका अपना बच्चा नहीं है। तो मैं आपसे बात कर रही थी माँ पर, कि माँ ही वो है जो जिसके चरणों में चारों धाम बसते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगर संसार की के समस्त वन काटकर लेखनी बना ली जाए, अगर संसार के समस्त सागर को मत्स्य बना लिया जाए, अगर इस समूची धरती को कागज बना लिया जाए और माँ का गुणगान करने बैठूं, तो शायद ये धरती कम पड़ जाएगी, क्योंकि माँ का स्थान पर्वत से भी ज्यादा ऊंचा है। माँ की ममता में सागर से भी ज्यादा गहराई है, माँ का आंचल अंबर से भी ज्यादा विस्तृत है, उसकी ममता के का प्रवाह अतुलनीय है, उसे किसी भी पैमाने में मापा नहीं जा सकता। तो आइए हम सब अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उस माँ के चरणों में रखते हैं, अपने शब्द सुमन रखते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि इंसान उस दिन नहीं मरता जिस दिन हम उसे चिता के हवाले करते हैं या हम उसे कब्र में दफना देते हैं, बल्कि इंसान उस दिन मरता है जिस दिन हम उसकी यादों को अपने दिल से भुला देते हैं। और माँ सुशीला तो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रही हैं और रहेंगी, अपने भजनों के ज़रिए, अपने आदर्शों के ज़रिए, अपनी सीखों के ज़रिए ये फिजाएं बता रही है कि माँ कहीं ना कहीं है। क्योंकि केवल काया मरती है, आत्मा तो अजर और अमर है। क्या हर सांझ को सूर्य अस्त हो जाता है तो उत्तर मिलेगा नहीं, हर सांझ को सूर्य अगर कहीं अस्त होता है तो कहीं उदय भी होता है। बस आत्मा भी इसी तरह से है, कहीं अस्त हुई तो कहीं उदय भी होगी। पुराने जीर्ण शीर्ण हो चुके काया रूपी वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेना ही आत्मा का काम है। मैं माँ शारदे से प्रार्थना करूंगी कि वो हमारी माँ को सद्गति प्रदान करे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और उनकी खूबियों को, उनको उनके गुणों को देखकर मुझे लगता है कि वाकई वो जहाँ भी होंगे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के नज़दीक होंगे। मेरा मन कर रहा है कि इस अवसर पर शायद अगर मैं रजा साहब, जो एक बहुत पुराने शायर गुजरे हैं, अगर मैं उनकी कविता से इस एपिसोड का समापन करूं, तो ये माँ को एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। आप कहते हैं कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। और पहले बच्चों को खिला देती है सुख व चैन से, बाद में जो कुछ बचा वो चैन से खाती है माँ। कि हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, जाने कितनी रात खाली पेट सो जाती है माँ। और जाने कितनी ठंडी रातों में रजा अक्सर हुआ, बच्चा छाती पे रहा गीले में सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। और जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का फूल, जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का फूल, आंसुओं के सांस पर बच्चे को बहलाती है माँ। और ममता का हक अदा हो ये तो हो सकता नहीं, ममता का हक अदा हो ये तो हो सकता नहीं, मरते मरते भी दुआ जीने की, मरते 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 वो दुआ जीने की, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। और प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। और चाहे खुशियों में भुला दे अपनी माँ की याद को, चाहे खुशियों में भुला दे अपनी माँ की याद को, जब मुसीबत सर पे हो, जब मुसीबत सर पे आती है तो याद आती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ।